मादा और मुश्किल अल्फाज की वजाहत। अब आप देखिए कि यहां पर जो है आयत नंबर 7 में मुश्किल लफ्ज है, एक है शिहाबिन और दूसरा है कबासिन, है ना। तो कबासिन है ना, तो अब ये कि इसके मानी क्या है, ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। शिहाब जो है इसका रूट है शीन हाबा, और ये असल में कहते हैं शिहाब ऐसे अंगारे को जिसमें चमक और शोला मौजूद हो, खा वो आग का हो या फिजा में पाया जाए, और इसकी जमा आती है शुहब। जैसे मसलन चमकता हुआ अंगारा, शोले वाला चमकता हुआ अंगारा, उसको जो है वो शिहाब कहते हैं। यानी ऐसा अंगारा जिसमें चमक भी हो और शोला भी हो, ये जरूरी है इसके अंदर शोहब। और दूसरा लफ्ज कुरान में अंगारे के लिए आता है कबसिन, काफ बा सीन, और इसके मानी होते हैं मांगा हुआ आग का अंगारा। इसके अलावा इसके मानी क्या हैं? कहते हैं कि असल में अल कबासु आग की, जैसे बहुत बड़ी आग है, आग बहुत सी जल रही है, उसमें से आप जो थोड़ी सी ले आते हैं ना, उसको काफबासीन कहते हैं। मांगा हुआ अंगारा से मुराद क्या है? जैसे बड़ी आग से आपने कुछ आग ले ली, और काफबासीन। अच्छा, ये आप इस्तेमाल भी करती हैं ये लफ्ज, आप इसको यूं याद रख सकती हैं। मसलन इक्तिबास, इक्तिबास क्या होता है? पूरा एक मजमून होता है, पूरी एक किताब होती है, पूरा एक टॉपिक होता है, उसमें से आप जो है ना एक पहरा ले लेती हैं। तो कहते हैं ना कि दर्जे जेल जो इक्तबासात हैं, इसकी आप तर्जुमा करें, तशरीह करें, है ना। तो इक्तिबास के मानी क्या है? बड़ी आग से कुछ आग ले लेना। और इसी तरह जो है वो ये, जैसे मैंने उसे इल्म सिखाया, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, अकबस्तुहु इल्मा, मैंने उसको इल्म सिखाया, अकबस्तुहु नारा, मैंने उसको आग दी। जैसे किसी को कोई मांग रहा है और मैंने आग दे दी, और उस जमाने में ये रिवाज भी था ना, और जैसे देही इलाकों में भी, अब तो खैर वो जमाना नहीं रहा, लेकिन लोग एक अंगारा ला के अपनी चूल्हे में रख देते थे, और किसी के घर में आग जल रही है, कहते अंगारा ले आए, और फिर उसके साथ जो है वो आग जलनी शुरू हो जाती है। हाँ, तो थोड़ी सी आग दे दें तो आग जलानी। दूसरा लफ्ज है तस्तलून। तस्तलून जो है इसका रूट है स्वाद लाम या, और इसके मानी होते हैं दाखिल होने के भी होते हैं, है ना, इस तरह गर्मी हासिल करने के भी होते हैं। जैसे असला दाखिल होना, और इस्तला गर्मी हासिल करना, गर्मी तापना। बाज लोग कहते हैं कि नमाज जो है ना, सलात जो है, उसका भी यही रूट है स्वाद लामिया। वो क्या करती है नमाज? गुनाहों को जला देती है, इसलिए उसका ये रूट भी जो है वो बयान किया जाता है। फिर लफ्ज है बूरी का, इसका रूट क्या है? बारा का, शाबाश, बरा का। और बरा का के मानी क्या है? ऊंट का सीना, ऊंट का बैठ जाना, तो ये बरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर लफ्ज है तहतजु, हा जा जा, हा जे, है ना। तो इसके मानी क्या होते हैं? इसके मानी होते हैं हिलना, दरख्त को इस तरह हिलाना कि इसका फल गिर पड़े। हाँ, वहुजी इलेही की बेजिज इन नखला। अब यहां पर जो है इस्तेमाल हुआ है तहतजू, यानी इस तरह वो हिल रहा था, हरकत कर रहा था, जैसे किसी ने उसे झटका दे दिया हो, जैसे किसी, यानी वो हिल रहा था झटका देकर। आप यूं भी कह सकती हैं कि वो झून रहा था, झूना मारना। और फिर लफ्ज है जान, ये भी आप पढ़ चुकी हैं, हैयतुन और जान और सोबान, तीन लफ्ज हैं, आए हैं सांप के लिए। और यहां पे क्या है, जान, जीन नून नून, जैसे कोई जिन है, जैसे कोई देव है, और हर वो जिन जो सांप की शक्ल में हो तो क्या है, यानी जैसे छुपा हुआ है वो ना। तो और आपने ये बात भी पढ़ी थी कि जान कहते हैं पतले और लंबे सांप को, फुर्तीला हो, पतला हो, और हैया कौन सा सांप होता है, इस्म जिन्स, मुजक्कर मुअन्नस, हर किस्म का सांप। और हैया तो उसे कहते क्यों है, मैंने आपको बताई थी ये बात, सांप जो है ना जैसे कुंडली मारकर बैठता है ना, अगर सांप देखें आप तस्वीरों में भी और असल भी देखो तो ऐसे ऐसे, यानी तो असल में अरबी जबान में जो है वो हवाया आंतों को कहते हैं, हमारी जो आंते हैं ना वो हवाया कहते हैं उनको, और वो सांप की तरह कुंडली मारी भी होती हैं, तो उनके लिए भी आता है सांप भी आंतों की तरह लग रहा होता है कुंडली मारकर, तो उसके लिए भी हैया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और इस्म जिन्स है ये। बहरहाल, और जो है वो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। और आखिरी जो है आयत नंबर 14 में लफ्ज है जहादू, और इसका रूट क्या है, जीम हा दाल, और मानी इसके क्या है, इनकार करना, है ना, मानी क्या है, इनकार करना। और इनकार करने के लिए आपने कुरान में लफ्ज पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं आपने, बहुत से लफ्ज पढ़े हैं ना, और अब आप परेशान भी ना हो, उनमें से आपको बहुत से आते हैं, आपने चार लफ्ज पढ़े हैं, शाबाश। एक है कुफर का कफारा, हाँ मुनकिर होना, दूसरा है मुनकिर अनकरा से, दो, और तीसरा है अबा, है ना, और चौथा आप यहां पढ़ी है जहादा। तो इसके मानी क्या है, किसी बात का इल्म हो जाने के बाद दीदा दानिस्ता इनकार करना, ऐसी बात का जबान से इनकार करना जिसे दिल तस्लीम करता हो। अब आप देखें इस बात को अगर आप याद रखें कि वह जहादू बिहा वस्तैकना था, इसका रूट क्या है, यकन, शाबाश, या काफ नून, और आपने पहले दूसरे दिन जो सबक पढ़ा था ना उसमें इसको याद कर लिया था, क्या था वो लफ्ज, यू के नून, पहले था यू मिनून, फिर आपने पढ़ा यू के नून, तो ईमान का जो अगला दर्जा होता है ना वो होता है यकन, है ना, और क्या होता है कि दिल की ठंडक का नाम है, दिल के सुकून का नाम है, कि आप जिस चीज को मान रहे हैं फिर दिल की गहराइयों के साथ आप जो है पूरी तरह आपको उस पर जो है वो यकीन है, तो इसे क्या कहते हैं, यकन, ऐकना, इस्तैकना, जिसमें कोई शक और शुबा ना हो, पूरी तरह बात को समझ लिया है, अब आप उसके पाया सबूत तक पहुंच गए हैं, मार्फत का दर्जा, यकीन का दर्जा इल्म से बढ़कर है, जो मालूम चीजें हैं जो आपको पता चल गई हैं उस पर दिल के सुकून और सीने की ठंडक का नाम जो है ना वो यकीन है। उल्लिन्ना मंतिक तैरी, मंतिक क्या रूट है इसका, नून तो एक काफ, और मानी इसके क्या होते हैं, बोली के लिए आता है, माफी जमीर के इजहार के लिए जो आवाज निकाली जाती है उसको कहते हैं नुत्क, नातिक, इंसान जो है वो कैसा हीवान है, नातिक हीवान है, बोलने वाला, बातें करने वाला। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे लफ्ज है जुनूदहू, जुनूद जो है जीम नून दाल इसका मादा है, और जुनूद जो है जुंदी एक सिपाही को कहते हैं, और जुनूद बहुत से सिपाही लश्कर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जिन और इंस और तैर तीनों यहाँ पे इस्म जिन्स हैं, और इस्म जिन्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये इस्म जिन्स जो है ये वाहिद मुजक्कर मुअन्नस जमा सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कभी एक मुराद होता है आयत के अंदर और कभी एक से ज्यादा मुराद होते हैं, कभी मुजक्कर कभी मुअन्नस, तो आपको जैसे समझ होती है तो अंदाजा होता चला जाता है। फिर जो है यूज़ऊन, यूज़ऊन जो है ये बहुत ही अहम लफ्ज है, और इसका रूट क्या है यूज़ऊन का, वौज़ाइन, शाबाश, इसका रूट है वौज़ाइन, और इसके मानी है रोकना, थामना, संभालना। अच्छा, अब आप देखें कि ये लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है किसी चीज को अलग-अलग करने के लिए भी, जब किसी चीज को रोक लिया जाए तो क्या कर रहे हैं कि उसको जो है वो अलग-अलग किया जा रहा है ना, जैसे। और ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है सफ बंदी के लिए भी, क्यों आप रोक रहे हैं तो जाहिर है सफे बना रहे हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है फिर दर्जा बंदी के लिए भी। और इसके अलावा तरबियत के लिए भी, तो मौके की मुनासिबत से फिर आपको ये देखना है कि इसके मानी क्या हैं। औज़ेनी, जैसे आज ये आपने यहाँ पे यूज़ ऊन पढ़ा, और आप आगे इसको जो है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं आयत नंबर 19 में आप पढ़ेंगी औज़ेनी, मुझे तौफीक अता कर, यानी मुझे इतनी नेमतें दी हैं तो ऐसा ना हो कि मैं तकब्बुर करने लगूं, मुझे रोक, मुझे थाम, मुझे पकड़, मुझे संभाल। तो जब आपको इसका रूट आता होगा, आपको इसकी गहराई की समझ होगी, तो आप फिर मौके की मुनासिबत से इसका तर्जमा कर सकती हैं। तो यूज अउन जो है यहाँ पे आप देखें तो किसी ने इसका तर्जमा किया कि जो है वो ये जो इंसान जिन परिंदे जमा किए गए थे हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई, किसी ने इसका तर्जमा किया वो पूरे जब्त में रखे जाते थे, ठीक है। और इसके अलावा किसी ने इसका तर्जुमा जो है वो क्या किया कि उनकी ग्रोह बंदी की गई, ये तर्जुमा भी हमारे सामने आता है कि ये जितने भी ये थे जिन इंसान और परिंदे उनकी ग्रोह बंदी की गई। तो इस तरह चूंकि जब एक लफ्ज के मानी मुख्तलिफ निकल रहे हों तो मौके की मुनासिबत से, और जिसको जिसका ज्यादा जिस चीज पर इत्मीनान होता है तो वो तर्जमा उसका जो है वो फिर मुफस्सरीन और तर्जमा करने वाले जो है वो करते हैं, तो आम लोग जो होते हैं फिर वो परेशान होते हैं कि इस तरह तर्जमा जो है वो क्यों है ना। तो बहरहाल असल बात यह है कि रूह की पता होना चाहिए कि यूज़ऊन जो है रोकने, थामने, संभालने इन सब के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद आप देखें नमल भी है और नमलातुन भी है, वादिन नमल, मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था नमल के बारे में कि जगह का नाम भी है और हाँ शाबाश ज़र्फ़े मकान भी है और चींटियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और वैसे नमल है क्या चींटी, और भी एक बात बताई थी कि नमल लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है एक चूंटी के लिए भी और बहुत सी चूंटियों के लिए भी, ये बात भी आपको बताई थी, सही है ना। अच्छा आगे नमलातुन है, कालत नमलातुन, ये एक चूंटी के लिए आया है। याति मन्नकुम, क्या रूट है इसका? हा तो मीम हतमा, क्या मानी है इसके? हाँ आप इसको पढ़ चुकी हैं पहले भी, और आप वो सूरत हिफ्ज कर चुकी हैं जिस जिसमें इसकी फैमिली का लफ्ज है, वमा अदरा कमल हतमा, है ना। तो असल बात क्या है कि जब आपको एक लफ्ज का रूट वर्ड याद हो जाए या एक लफ्ज के मानी याद आ जाए, तो वो लफ्ज फिर जहां जहां इस्तेमाल हो वो आपकी समझ में आना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। और इसी तरह जो है वो आपके जो है वो जो वोकैबुलरी है बढ़ती चले जाएगी। अल्लाह ताला कहते हैं सूरत अल हुमजा में, कल्ला लयुंबजन फिल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहि अल-मुक़दा। तो असल बात क्या है कि आप देखें कि हा तोए मीम जो है इसके मानी है किसी चीज का चूरा चूरा होना, किसी चीज को पीस डाला जाए, रोंद दिया जाए, है ना। और आप देखें यह तीमन न कुम, नून पर शद भी आ गई, तो कुचलने रोंदने पीसने और किसी चीज को रेजा रेजा बिल्कुल ही उसका जो है वो हशर नशर कर दिया जाए, तो उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो कुरान में ये मुख्तलिफ जगह में मिलता है, लयहदी मन्नकुम, कहीं तुम्हें रूंद न डालें, चूरा चूरा न कर दें, पीस न डालें। फिर जो है वो अहम लफ्ज है फतबस्समा दाहिकन। हाँ तो एक लफ्ज है फतबस्सम और दूसरा है दाहिकन, और दोनों लफ्ज जो है वो हंसने के मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फतबस्सम का रूट क्या है? बासीन मीम, बासीन मीम। तो जैसे होता है ना बिस्मा भी लोग नाम रखते हैं, मुस्कुराहट स्माइल, तो बासीन मीम जो है ये मुस्कुराहट के लिए आता है। और मुस्कुराहटें मुख्तलिफ तरह की होती हैं, कोई मुस्कुराहट खुशी की होती है, कोई मुस्कुराहट खौफ की होती है, कोई मुस्कुराहट जो है वो किसी को हकीर आप समझ रहे हैं इस्तिखफाफ, है ना, किसी को बहुत ही खफीफ हल्का समझ रहे हैं उसकी होती है, हकारत की भी मुस्कुराहट होती है, होती है ना। तो और मुस्कुराहट होता क्या है? हंसने की इब्तदाई शक्ल। जैसे कहा मैंने गुल को हाँ कि कितना है कितना सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। तो शायर कहता है कि मैंने जो है पूछा कि ए गुल तेरी दुनिया में जिंदगी कितनी है, ए फूल तो दुनिया में कितनी मुद्दत कितना अरसा जिंदा रहेगा। तो जो कली थी ना मेरी ये बात सुनकर वो खिल उठी, मुस्कुराई, तबस्सुम यानी वो खिल गई, और उसने कहा कि बस जितनी देर तक मैं बंद हूं तो मेरी जवानी है, मैं खिल जाऊं तो खत्म, मेरी पत्तियां पत्तियां बिखर जाती हैं। खैर मेरा ये टॉपिक नहीं है, फतबस्समा। फिर वो मुस्कुराया, और कैसे मुस्कुराया? दाहिकन, हंसता हुआ। तो आपने जब याद किया था तजवीद का पहला सबक, उसमें दांतों के नाम भी याद किए थे, हाँ तो वो क्या था? दाहिक की जमा दवाहिक। और जब पूरा मुंह खोलते हैं ना हंसते हैं तो फिर ये जो साइडों पे दांत नजर आते हैं, सनाया उलिया सनाया सुफला के साथ लगे हुए, तो वो नजर आते हैं। तो दाहिकन जो है ये कहते हैं हंसने को, यानी तबस्सुम के मानी मुस्कुराना है, स्माइल है, और दाहिकन के मानी है लाफ, हंसना लाफ करना। फिर औज़ेनी आ गया, अब ये आपको माशाल्लाह आता है, और अशकुरा शुक्र से है, मानी क्या है? हाँ उबल पड़ना, उमंड आना, और कैसे उबल आना उमंड पड़ना? जैसे जैसे चश्मा नहीं फूट पड़ता है ना, चश्मा कहीं फूट पड़े तो इसी तरह से हुआ अश्करु मिन बुरूक, ये मुहावरा तो आपको याद ही होगा। अरबों के यहाँ बुरूक एक घास को कहते हैं, वो घास जो है थोड़ी सी बारिश के चंद कतरे हैं, बारिश है थोड़ी सी मिली है उस घास को, बहुत तेजी से फैलनी शुरू हो जाती है। तो अरब लोग किसी के बारे में कहते थे ना कि बड़ा शुक्रगुजार है, बड़ा शुक्रगुजार है, तो कहते थे हुआ अश्करु मिन बुरूक, वो तो बुरूक घास जो है बुरूक उससे भी ज्यादा शुक्रगुजार है। बाज लोगों के पास थोड़ा भी होता है मुसीबतों में, परेशानियों में, आजमाइशों में, कोई ना शुक्री नहीं है। और बाज लोगों को अल्लाह ने खूब नवाजा होता है, कहीं वो हम तो नहीं, और खूब ज्यादा ना शुक्रे, नमक हराम ना शुक्रे। मसलन आप देखें हमारा हाल ये है, गर्मी होती है तो रोते हैं, जितनी गर्मी है, सर्दी होती है तो रोते हैं, बर्फ गिरती है तो कहते हैं लो जी ये तो बंद हो गए घर में ना। तो असल बात क्या है कि बर्फ के दिन भी अगर जलवत के दिन नहीं है फिर खलवत के तो है ना, तो खलवत किससे करें? अल्लाह से, अल्लाह से दोस्ती करें, अपने हिफ्ज़ कुरान जो है उसको दोहराएं, कुरान हिफ्ज करें। अगर 80 साल का बूढ़ा कुरान हिफ्ज कर सकता है तो फिर मैं और आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो हमेशा जिस जगह जिस मकाम पर खड़े हुए हैं तो क्या है, अशकुर बरू घास से ज्यादा शुक्र गुजारों ने। फिर इसके बाद लफ्ज है तफक्कदा, फा कौफ दाल, और इसके मानी होते हैं जैसे किसी चीज को गुम हो जाए, कोई चीज गुमशुदा चीज को तलाश किया जाए। आप जैसे कहती हैं मैं इस चीज का फुकदान पाती हूं, फुकदान भी आप है ना, कमी पाना तो गुम पाना, और ये लफ्ज फिर जायजा लेना, तलाश करना, इन सब चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। वैसे तो आप देखें इसके लिए फाता भी आता है, यानी मौका हाथ से निकल जाए, किसी चीज के मिलने की उम्मीद ना हो तो उसके लिए फाता आता है। इसी से हम फौत हो जाना कहते हैं, कि जो ये जो शख्स ही हाथ से निकल गया, चला गया। इसी तरह अगर वक्ती तौर पर कोई चीज मौजूद तो है, यानी कोई चीज मौजूद है लेकिन वक्ती तौर पर मौजूद होने के बाद भी मिलती नहीं है, तो उसके लिए फुकदान, फकादा, है ना। जैसे मसलन आजकल फलां चीज का फुकदान है लेकिन फिर वो चीज जो है वो थोड़े कुछ अरसे बाद मिल जाए, या इस तरह। इसी तरह दल्ला भी है, किसी चीज का अपने वजूद को दूसरों में मुदगम करके ना मिल सकना, है ना। जैसे कोई शख्स जो है वो, या कोई भी जो है वो रास्ता ही भूल गया, गुमराह हो गया, उस तरह ये मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे अहम लफ्ज है अलहुदहुद, ये हदा हिद की जमा है और ये 4 हर्फी है इसका मादा, और ये एक परिंदे का नाम है। गायबीन गायब की जमा है। फिर इसके बाद है आयत नंबर 22 में फमकासा, फमकासा का रूट क्या है, मीम का सा, और इसके मानी क्या है, शाबाश, माशाल्लाह, बारकल्लाह फी, इंतजार में ठहरना, किसी के इंतजार में ठहरना। अहत्तू का रूट क्या है, माशाल्लाह क्या बात है। और मुझे तारीफ का ये अंदाज बड़ा अच्छा लगता है कि मैं शुक्र करती हूँ उस रब का जिसने उम्मते मुहम्मदी में ऐसे लोग पैदा किए, है ना, के मौके की मुनासिबत से फौरन जवाब दें। तो इसका रूट है हा वो तोए, इसी से अहाता है, इसी से मोहित है। आप रूटवर्ड याद करने के लिए ना उसकी फैमिली के 3 4 5 लफ्ज याद कर लिया करें तो फिर वो भूलता नहीं है। अब वो तो इसमें नहीं है लेकिन मोहित, अहाता, और तोहित का रूट क्या है, हा वो तोए। तो कुछ लोग अभी भी नहीं बोल रहे, नाश्ता नहीं किया हुआ या थके हुए ज्यादा है, क्या बात है, ईद के बाद तो और फ्रेश होना चाहिए ना। तो हित क्या रूट है इसका, अब थोड़ी सी मुनासिब आवाज आई है। अच्छा फिर उसके बाद है लफ्ज अर्शुन, आइन राशीन, और इसे किसे कहते हैं, अर्श ऊंचाई बुलंदी कुर्सी, हाँ, और इसका ऑपोजिट क्या है, फर्श, नीचे के लिए फर्श। آیت نمبر 25 میں لفظ ہے اور وہ لفظ ہے الخب خبآ ہے نا. تو یہ کتنے لوگوں کے پاس ہے یہ لفظ؟ اچھا تو زیادہ تر کے پاس جو ہے یہ لفظ ہے خبآ. اور یہ جو لفظ ہے آپ دیکھیں کہ یہ پوشیدہ کے معنی دیتا ہے اور جو ہے وہ پوشیدہ کے لیے آپ نے اور لفظ بھی پڑھے ہیں یعنی چھپنا چھپانا اور اس کا روٹ ہے خا با حمزہ خا با حمزہ. اور جو ہے وہ اس کے معنی کیا ہیں یعنی کسی چیز کا چھپنا یا پھر یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ چھپانا. اور آپ کو کچھ یاد ہے کہ چھپنا یا چھپی ہوئی چیز کے لیے جو ہے وہ اور کون سے لفظ ہیں؟ خفی بھی ہے ہاں. یعنی آپ نے جیسے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے لفظ ہے غابہ غائب ہونا ہے نا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ غائب ہونے کے لیے اور ہمیں لفظ کون سا ملتا ہے جیسے غرابہ ہے وقابہ ہے خفیہ ہے افلا ہے عذابہ ہے بہت سے لفظ ہیں. یعنی یوں دیکھیں تو قرآن میں ہمیں 9 لفظ ملتے ہیں. کن بھی ہے کن جیسے کأنہن بید مکنون مکنون چھپے ہوئے کے لیے آتا ہے نا. اسی طرح بطن بھی ہے پیٹ یا پیٹ کا اندرونی حصہ. تو بہت سے لفظ ہیں بس آپ ذرا سا ذہن پہ زور ڈالیں گی تو آپ کو اور پتا چلے گا. تو یہ تو لفظ جو تھے جو 9 ہیں یہ تو چھپنے کے لیے ہیں. چھپانے کے لیے جو قرآن میں آئے ہیں وہ ہے 6 وہ الگ ہیں. وہ ہے کتاما اورا یا وارا. کتاما جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے ایمان کو شہادت کو جو حق بات ہے اس کو دانستہ طور پر چھپانا. عموماً یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتمان حق بھی آپ نے سنا ہوگا ہے نا. تو جان بوجھ کر حق کو جو ہے وہ چھپانا یا ایمان کو. دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے وارا اور ورا. یہ جیسے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر دو معنی پائے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے آگ سلگانا آگ نکالنا اور دوسرا ہوتا ہے کسی حقیقت پر پردہ ڈالنا. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے وہ جیسے آپ سورت مائدہ میں پڑھ چکی ہیں کہ جب وہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تو پھر اس نے کیا کیا تھا ہاں کیفا یواری سوءت اخی کہ کیسے اپنے بھائی کو کی لاش جو ہے اس کو چھپائے. یعنی حقیقت جو ہے اس کو کسی اوٹ کے اندر کیسے کر دے دوسروں کی نظروں سے کیسے اس کو اوجل کر دے ہے نا. حقیقت پر پردہ ڈالنا. تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ معنی یہاں پہ اس کے کیا ہے کہ حقیقت پر پردہ ڈالنا. بہرحال تیسرا معنی ہے اکنا. اکنا جو ہے اس میں بھی اس کے مادے میں بھی دو باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو چھپانا دوسرا حفاظت کرنا. جیسے کسی چیز کو حفاظت کے لیے کسی جگہ پر چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا اگر کوئی دل میں کوئی بات آپ چھپا لیں تو کیوں دل میں بات چھپا رہے ہیں آپ؟ حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ نے بات وہاں پہ رکھ دی اپنے دل کے اندر. یا پھر کسی جگہ پہ چھپا دیں یا کسی پہاڑ کی کھو میں چھپا دیں ہے نا. اس کے لیے بھی آتا ہے وَجَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. اور یہاں پہ اسی طرح ہے جیسے عورتوں کو پیغام دیں جب آپ نے کہا کا او اکننتم فی انفسکم تمہارے دل میں تو ہے کہ میں اس سے نکاح کروں اب تمہاری مرضی ہے کہ تم جو ہے وہ پیغام دے دو یا پھر اس کو دل میں چھپا لو. چوتھا لفظ ہے اثر. سر راز کی بات کو کہتے ہیں. اس کی جمع اسرار ہے اور اس کا جو معنی ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ کسی راز کی بات کو دل میں چھپانا خواہ وہ حقیقت ہو یا نہ ہو. مصلحت کے لیے آپ اس کو چھپا رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے तो ये इसके मानी हैं असर के, और आपको आता है ये लफ्ज। पांचवा है अख्फा, खफी, कोई बात या ख्याल दिल में छुपाया जाए या कहीं भी और, जाहिरी मानवी दोनों तौर पर ये इस्तेमाल होता है। और छुपाने में सबसे ऊंचा दर्जा, सबसे आखिरी दर्जा किसका है? खब का, जो आज का लफ्ज है। और खबा किसी चीज को छुपा रखना, आप इसको यूं भी कह सकती हैं जैसे खाबा, खाबा किसी से पहेली कहना। अब पहेली क्या होती है, आप इसी से अंदाजा कर लें कि किसी से कोई चीज छुपा कर फिर उसके मुतालिक सवाल करना। आप एक राज है आपके पास, आप किसी को फिर राज अपने पास छुपाया हुआ था आप उसको बता देते हैं, लेकिन पहेली में क्या है कि पूछ पूछ कर सवाल कर करके फिर आप उसको जो है वो पोशीदा चीज जो है आप उसके बारे में सवाल करते हैं कि तुम बूझो तुम बताओ फिर बताते हैं ना। तो असल में पोशीदा और मख्फी खजाने के लिए भी ये खबआ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और खब अल अर्द, जमीन की नबातात, जमीन के अंदर जो नबातात है वो पोशीदा खजाना है ना, छुपा हुआ है। जैसे कुव्वते रोईदगी को भी कहते हैं, जमीन के अंदर जो रोईदगी की कुव्वत है ना कि जमीन जो है वो सोना उगलना शुरू कर देती है। यहां गोल्ड के मानी में मैं नहीं कह रही सोना, मतलब वो सब्जा, वो नबातात। अब आपको जमीन पर नजर तो नहीं आ रही लेकिन बीज है, पानी है, खाद है, अगर जमीन के अंदर रोईदगी की कुव्वत होती है फिर वो उसको निकालना शुरू कर देती है। बहरहाल इसी तरह खब समा बारिश के लिए भी आता है, आसमान में से बारिश जो है वो बरसनी शुरू हो जाती है। अखरजा खब असमाई, आसमान ने जब बारिश को निकाला यानी अपनी वो जो ताकत थी पानी की, वो जो उसके अंदर राज छुपा हुआ था जो पहेली थी उसको जब निकाला तो क्या हुआ? खब अल अर्दी, तो जमीन पर रोईदगी पैदा कर दी, पौधों को उगाया। तो बहरहाल खब ये लफ्ज है यहां पे जो है ये युखरिजुल खब फिस समावाती वल अर्द, आसमान और जमीन दोनों में से पोशीदा चीजें निकालने वाला है ना, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। आसमान से बारिश आ रही है या जमीन से सब्जा निकल रहा है, नबातात उग रही है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। दूसरा लफ्ज कौन सा है? अच्छा एक मिनट, एक एक बंदा पहले बोलेगा। लफ्ज कौन सा है? कातियातन। ये तो नया लफ्ज नहीं है, क्या रूट है इसका? काफ तोए आएं, कसा करना, काटना। ये लफ्ज जो है ये हिस्सी और मानवी दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसम फाइल है, और मसलन एक होता है कि आप किसी चीज को काट रही हैं, मसलन कपड़े को काट रही हैं, उसके लिए भी हरूफ मुकत्तात जो अलग अलग होकर कट कर यानी अलहदा अलहदा इस्तेमाल होते हैं ना, हरूफ अलग अलग पढ़े जाते हैं उनको भी कहते हैं। इसी तरह जैसे हरूफ आपको नजर आ रहे हैं, कपड़ा काट रही है आपको नजर आ रहा है, आप कोई चीज काट रही है तो नजर आ रहा है, लेकिन आप किसी मामले का फैसला करती हैं, किसी मामले में जो है एक राय कायम कर लेती हैं, तो गोया के बहुत सी मशवरे गड़मड़ थे, आपने एक फैसला कर लिया, तो उसके लिए भी आता है। हिस्सी तौर पर आपने फैसले को कट कर लिया, आपने डन कर दिया, हाँ मुझे बस अब ये करना है, कतई फैसला। कातियातन हिस्सी तौर पर काटना या मानवी तौर पर काटना, कतई बात के लिए कातियातन ये इस्म फाइल है। अच्छा और तीसरा लफ्ज, और जल्दी बताएं और एक वक्त में एक बंदा बताए। 44 आयत है और इसमें लफ्ज है, हाँ जी इसमें लफ्ज है साकेहा। और अगर आप गौर करें तो ये लफ्ज जो है इसका रूट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है रूट? और आप सोचें कि इसकी खास बात क्या है जी? नहीं, यहाँ पर ये साकी नहीं है, यहाँ पर ये साकी के मानी में नहीं है। और आप अगर जो है वो गौर करेंगी, आप सोचेंगी, तो आपको इसकी समझ और आने लगेगी। तो असल में इसका रूट है सीन वो काफ, और इसके मानी होते हैं जैसे साका चलाना भी, हाँ सूक बाजार के लिए भी आता है, पौधे के डंडल को भी कहते हैं, और इसी तरह पिंडली को भी कहते हैं। अच्छा, पौधे के डंडल में और पिंडली में रिजेम्बलेंस क्या है? तो असल में सीन अलिफ काफ जो है ये पिंडली और एक को कहते हैं, और सूक जमा है, और यहां पे था साकैन, दोनों पिंडलियां, नून गिर चुका है ना, तस्निया है और मजाफ है का नून गिर चुका है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। तो पिंडली कभी ये लफ्ज टांग के मानी भी देता है, इसका इस्तेमाल गैर जानदार चीजों पर भी होता है, जैसे साकश जा रहा था दरख्त का तना, इसी तरह वल्तफत साकु बिसाकी इला रब्बी का यौमाइज़िनिल मसाक, है ना। तो बहरहाल आप देखें कि पौधा जो है उसका डंडल मोटा सा होता है जिस पे पौधा ठहरा हुआ होता है, हमारी जो पिंडलियां हैं वो भी, यानी जो है वो जिस्म में, जिस्म पूरे को जो है वो एक सबात एक करार देती हैं, जिस पे हमारा जिस्म चलता है, ठहरा हुआ होता है, करार पकड़ता है। और डंडल आमतौर पे यानी पत्ते टहनियों पर होते हैं ना, हाँ पिलर की तरह, और इसी तरह जो पिंडलियां हैं वो भी जो है वो डंडल किसी इसमें मुशाबियत है। तो बहरहाल साकेहा, और तीसरा लफ्ज है और वो कौन सा है? मुमर्रदुन। अगर आप गौर करें तो आप ये लफ्ज वैसे पढ़ चुके हैं, मीम रा दाल इसका रूट है, और मीम रा दाल जो है इसके मानी क्या होते हैं? शजरुन अमरद, वो दरख्त जिसके पत्ते ना हो, रमला तुम मर दिया, रेत का टीला जिस पर कोई चीज उगती ना हो, और अमरद उस नौजवान को कहते हैं जिस पर सब्जा ना उगा हो, जिसकी दाढ़ी नहीं है, जिसके अंदर खैर नहीं है। इसी तरह अलमारिद वल मरीद, जिन्नों और इंसानों से उस शैतान को कहा जाता है जो हर किस्म की खैर से आरी हो, है ना। तो अब आप देखें, इसी तरह मरादा फुलानुन अनिल महासिन, हुसन से है महासिन, वो जो महासिन यानी खूबियों से आरी है, वो जो सरकशी किए हुए है। अब आप देखें कि अब सवाल ये पैदा होता है कि मुमर्रद जो है इसका, इसके फिर मानी यहां पर क्या है? मुमर्रद जो है इसके बारे में आता है कि इसके मानी है हमवार या चिकना, चिकनी जो चीज कर दी हो। तो दरअसल मसलन इसके मानी है शीशे जड़े हुए होने की वजह से हमवार। अब शीशा क्या कर रहा है? वैसे तो ये है कि महल का किसी ने ये तर्जुमा भी यहां पे किया है कि शीशे का चिकना फर्श है, इन्नहु सरहुन, सरहुन महल के लिए है, और मुमर्रदुन शीशे का चिकना, क्योंकि आगे कवारीर है शीशा, तो मुमर्रद के मानी है चिकने के। तो मानी ये है कि मसलन जो है वो इतना खूबसूरत महल था, शीशे का बना हुआ और मुलायम और बिल्कुल साफ सुथरा, इन ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा था, अंदर सब कुछ उसके जड़ा हुआ था। तो क्या है, जैसे प्लास्टर नहीं किसी के अंदर लगा के उसको खूबसूरत बना दिया जाए और उस पर नाखून फिसलने शुरू हो जाएं। तो मारिद के बारे में आता है कि एक मशहूर कले का नाम भी है, और इसके मानी जो है वो ये भी है कि जैसे यानी इतना फिसलने वाला, इतना चिकना किया हुआ कि पांव रखें तो आप उसको उस पे चल ना सकें, आप फिसलने लगे। गोया के होता है ना कि आप अगर जो है वो आराम से उस पर चल सकें तो गोया के आप गिरेंगे नहीं, लेकिन चिकना बिल्कुल साफ हमवार के आप उस पर गिर रहे हैं। तो यहां पर मुमर्रदुन जो है वो हमवार के मानी में है, चिकने के मानी पे है कि वैसे तो ठीक है वो शीशे जड़े हुए थे, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन महसूस ऐसा होता था कि साफ है, हमवार है। तो ये है इन्नहु सरहुन मुमर्रदुन, और सरहुन महल के लिए है, और आप पढ़ चुकी हैं महल के लिए कसर लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। कोई भी आलीशान बुलंद इमारत, ऊंची इमारत को कहते हैं, लेकिन सरह ऐसी इमारत को कहते हैं जो नक्शो निगार से मुजयन हो और नकायत से पाक हो, जो बड़ी ही खूबसूरत हो। नक्शो निगार भी बने हुए हैं, खूबसूरत बुलंदो बाला अच्छी इमारत है, मकान है, कुछ भी, उसके लिए सरहुन का लफ्ज है। और फिर आप कवारीर भी पढ़ चुकी हैं, काफरारा इसका रूट है, और जो है वो किसको कहते हैं, ऐसा शीशा जिसके ऊपर फूल बने हुए हैं, बेल बूटे बने हुए हैं, नक्शो निगार जो है वो उसके ऊपर बने हुए हैं, और ऐसा शीशा जो कि जिस पर जो है वो कुछ बना हुआ नहीं है, जो बिल्कुल साफ है, तो उसको आप क्या कहेंगी, जुजाजा। शीशे का टुकड़ा या शीशे का बर्तन, उसके लिए जुजाजा का लफ्ज है। और जो है वो यहां पर इस्तेमाल हुआ है कवारीर, इसका वाहिद है कारूरा, और इसके मानी क्या है कि ऐसा बर्तन जो रंगदार है या उस पर फूल बूटे जो है वो बने हुए हैं, तो बहरहाल यानी रंगीन शीशा। तो अब आप देखें, सरहुना पढ़ चुकी थी, कवारीर भी आप पढ़ चुकी थी, है ना? तो अच्छा, ये तो थे वो तीन वाले, अब चार, चार वाला कौन है? अच्छा, और इन्होंने जो है वो एक और लफ्ज पूछा है, और वो लफ्ज है इफरीतुन। और इफरीतुन लफ्ज जो है इसका रूट है, इसका रूट अगर आप गौर करें तो आप क्या बताएंगी, क्या रूट हो सकता है? यानी आप देखें तो आप खुद भी माशाल्लाह अब आप बात को समझ रही हैं कि इजाफी हुरूफ इसके अंदर जो है वो कौन से हैं और सही वाले कौन से हैं। तो ऐन फा रा इफरीत, इसका रूट है ऐन फा रा, और ये लफ्ज जो है ये जिन के लिए आया है। अब जैसे जिन कहते हैं जीन नून नून, पोशीदा चीज को, छुपी हुई चीज को, तो इफरीतुन से मुराद जो है वो कैसा जिन है, ऐसा जिन जो के बहुत बड़ा है, जैसे देव है। कल देव देखा तो किसी ने नहीं है, हमने जिन भी नहीं देखा ना देव देखा है। तो इफरीत जो है वो जिन जो बहुत शेजोर हो, बहुत मजबूत हो, कवि हैकल हो, उसको इफरीत कहते हैं। और वैसे आप देखें कि जिन के लिए जो हमें लफ्ज मिलते हैं, नंबर एक जिन, ये इसम जिन्स है, अल जिन्नी मिन अल जिन्नी वल इंस, है ना? तो आप पढ़ चुकी हैं इसको, और जिन्नत जान, जिन का इसम जमा है। दूसरा है शैतान, किसी आदमी का हक से दूर होना, और शैतान हर बदरूह को कहते हैं जो हक से दूर है, और जिन्नों में भी शैतान होते हैं। तीसरा लफ्ज है मारिद, मारिद जो है ऐसे जिनको कहते हैं जो अपनी सरकशी में इंतहा को पहुंच जाए, वही अभी जो आपने मीमरा दाल पढ़ा ना, हर खैर से खाली, जिनकी सिफत के तौर पर मारिद का लफ्ज आया है, मारिद। वहिफ्ज़ मिन कुल्ले शैतानि मारिद, और शैतान ने सरकश से इसकी हिफाजत की। और एक जिन के लिए लफ्ज आया खन्नास का भी, खानून सीन पीछे हटना, सो करना, खानिस सितारों को भी कहते हैं, और खानिस सितारों को फिर क्यों कहते हैं, खुन्नस इसकी जमा है, तू कहते हैं सितारे क्या करते हैं, सीधी चाल चलते चलते उल्टा चलना शुरू हो जाते हैं, पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। सितारों की भी ये सिफत है, जोहल, मुश्तरी, मरीख वगैरह। तो खन्नास मुबालगे का सीगा है, और शैतान क्या करता है, हर वक्त दाव फरेब की गरज से पीछे हटता है, आगे चलता है और वसवसे डालता है और इंसानों को गुमराह करता है। तो ये है। और फिर पांचवा इफरीत का लफ्ज है। तो बहरहाल ये हैं मुश्किल अल्फाज। और अब आप ना पहला काम ये किया करें कि जब आप तर्जुमा लिख रही हो उस वक्त आप मुश्किल अल्फाज को साथ ही सर्कल कर लिया करें कि ये मेरे लिए मुश्किल है या नया है, और अपने जहन पे आप जोर डालना शुरू करें। आपको कोई सूट देता है, आप कहती है नहीं, ये डिजाइन मैंने पहले पहना हुआ है, इस तरह के रंग मेरे पास पहले है, ये चीज मेरे पास है। यानी जहां दुनिया की बात होती है हमें सब पता होता है कि ये है, ये मैं खा चुकी हूँ, इस रास्ते पे जा चुकी हूँ, ये मेरी मतलब जो है मैं इसको जानती हूँ, ये पहले मेरे इल्म में ये चीज आ चुकी है। अपनी हम बड़ाई, अपनी इज्जत, उसकी बात करते हैं। तो अब आप माशाल्लाह आप देखें कि आप चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अब आपने उतराई शुरू कर देनी है। यानी 15 पारे के बाद क्या है, 15 तक आप चढ़ाई चढ़ रही थी, 15 के बाद तो आप अब नीचे आने लगे ना, सिपारे कम होने लगे, पहले बढ़ रहे थे ना। 15 तक क्या है कि आप एक पीक को पहुंची और फिर आगे मजीद 15 रहते हैं, तो अब क्या है। हाँ, अब 20 तक जब जाएंगी तो फिर 21, यानी नीचे जैसे कम होते जा रहे हैं पारे, नीचे की तरफ आने का मतलब क्या है, वैसे तो सिपारे बढ़ ही रहे हैं लेकिन अब क्या है कि आपके सिपारों जो पढ़ने हैं आपने अभी वो कम है, जो पढ़ चुकी हैं वो आपके ज्यादा हो गए हैं। और इसमें आप शर्माए नहीं, किसी को हो सकता है अभी भी 14 ना आते हो और किसी को हो सकता है कि अब एक लफ्ज है जो उसके लिए नया है। तो आप अपना खुद मेहनत करें, ये भी हो सकता है आने से पहले आप घर में आयतें अगला 2 रुकू 2.5 रुकू देख कर आया करें, कुरान के 2-3 सफ़े तक आप पढ़ लिया करें, जस्ट ऐसी कि मैं खुद से पढ़ूं बगैर तर्जमे के कितना मुझे आता है, तो इस तरह आपको अब आएगा ना। तो बहरहाल अगर आपके फिर भी कुछ अभी लफ्ज रह गए आप घबराएं नहीं, अभी इंशाल्लाह हम तफसीर करेंगे तो उसमें इसको कवर कर लेंगे, ठीक है।